16 जनवरी दिन शनिवार, नमस्कार। भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। अफ्रीकी देश बुर्किना फासू के वागाडुगू में चरमपंथी हमला, कम से कम 20 की मौत, सुरक्षा बलों और चरमपंथियों में लड़ाई जारी। फ्रांस में ड्रग ट्रायल में शामिल 90 लोगों में से कई की हालत नाजुक। जन्मदिन पर मायावती का बीजेपी के खिलाफ बयान, कांग्रेस पर नरम। और सुनवाएंगे कहानी कश्मीर के अता मोहम्मद की।
एयरपी आर्मी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जो उनको फिर ले आती थी, इन्फॉर्म करते थे, तो फिर हमारे साल का भिंडार में मोहल्ला बादशाहबाड़ी में वो लाते थे, लाकर वो उनको दफन करवाते थे।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। फ्रांस में एक प्रयोगात्मक दवा के परीक्षण के चलते एक व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है, जबकि 3 की हालत बहुत ही गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री मारिसोल टूरिन ने इसे एक दुखद घटना बताया और मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी घटना पहले नहीं हुई है और इस मामले की जड़ तक जरूर पहुंचा जाएगा। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू में एक होटल पर हुए चरमपंथी हमले में 20 लोग मारे गए हैं और 15 घायल हुए हैं, और वहीं कई लोगों को बंधक बना लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्होंने सीरिया के शहर मदाया में एक मेडिकल टीम और मोबाइल क्लिनिक भेज दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक अधिकारी टेरिक चास रेविक ने कहा है कि सीरियाई सरकार ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा, कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ यहाँ मौजूद हैं और इनकी टीम मदाया में लोगों को ज़रूरी मदद पहुँचाएगी। WHO के एक अधिकारी टेरिस जास रेविक के शब्द। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे युद्ध अपराध बताया था। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के साथ एक आपात बैठक की अपील की थी, जिससे कि सीरिया में मौजूद घेराबंदी पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकें और वहां फंसे लोगों को मदद मिल सके। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्ला ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तभी होगी जब भारत पठानकोट एयरबेस पर हमले में उनकी संलिप्तता के ठोस और स्पष्ट सबूत देगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस मामले की जांच के लिए एक दल भारत भेजना चाहता है और भारत ने भी इस पर हामी भर दी है। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने WTA सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब जीत लिया है। संघर्षपूर्ण फाइनल में सानिया हिंगिस ने कैरोलाइन गार्सिया और क्रिस्टीना मालदिनोविच की जोड़ी को 1-6, 7-5, 10-5 से हरा दिया। दोनों का इस साल का ये दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। क्यूबा से चले 8,000 में से 180 शरणार्थियों का पहला जत्था, जो महीनों से कोस्टा रिका में फंसा हुआ था, वो मेक्सिको की सीमा पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया है। इन मध्य अमेरिकी राष्ट्रों में पिछले महीने ही पारगमन समझौता हुआ था, ऐसे में ये सभी कोस्टा रिका में रहने को मजबूर थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा है जिसे आप फैसल मोहम्मद अली से सुन रहे हैं। नमस्कार। अभी अभी खबर आ रही कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी में चरमपंथी बंदूकधारियों ने हमला कर दिया है। हथियारों से लैस चरमपंथियों का हमला राजधानी वागाडुगू के एक होटल पर हुआ। इसका इस्तेमाल विदेशी पर्यटक करते हैं और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी। हमला स्थानीय समय के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास हुआ। मेरे साथ हैं स्टूडियो में अमल चौधरी, जिन्होंने अलग अलग जगहों से कई जानकारियां इकट्ठा की हैं। अमल, ये बताएं कि क्या वहां के हालात हैं इस वक्त।
जी, जैसा कि हमने अभी मुख्य समाचारों में सुना कि यहां पे 20 लोग मारे गए हैं और 15 लोग करीब घायल हैं और कुछ लोगों को इसमें बंधक भी बना लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार शाम 7:30 बजे स्प्लेंडेड नाम का होटल था, जिसके सामने दो कार बम धमाके हुए और विदेश मंत्री अल्फा बेरी ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने होटल की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है और उन पर हमले की तैयारी की जा रही है। और खबरों के अनुसार चरमपंथी संगठन अलकायदा के मगरिब उनकी इकाई है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक इसकी। और इनका जो लोकल टीवी स्टेशन है बुर्किना 24, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अभी पहुँच रही हैं, और जो US एम्बेसी है वहाँ पे इनकी राजधानी जी वागाडुगू में, उन्होंने कहा है कि वो इस जो हमला हुआ है वो इससे उनको पूरी इसकी जानकारी है और वो इस सिचुएशन का इस बिल्कुल नज़र बनाए रखे हुए हैं वहाँ पे वो। और इससे अभी बुर्किना फासो में इससे पहले क्या कहते हैं राष्ट्रपति के तख्तापलट भी हुआ था पिछले साल, और वहाँ पे इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं। और उनके जो पड़ोसी मुल्क है माली, वहाँ भी पिछले साल नवंबर में इस तरह का एक चरमपंथी हमला हुआ था जिसमें करीब 20 लोग लगभग मारे गए थे। और इनके एक हमारे जो BBC संवाददाता हैं, माफ़ कीजिएगा, एनालिस्ट है, मतलब जो विश्लेषक हैं, सिंथिया ओहान, वो कह रहे हैं कि बुर्किना फासो में जब से तख्ता पलट की स्थिति बनी है तब से यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जिस वजह से जो चरमपंथी संगठन हैं वहाँ पे वो आए दिन वहाँ पे हमले करते रहते हैं। और इसके अलावा जी बताएं,
साथ साथ श्रोताओं को ये बता दें कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अल्फा बेरी, जैसा कि कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जो फ्रांस के जो विशेष दस्ते हैं उनसे मदद ली जा सकती है इस मामले में। और बुर्किना फासो जो है वो ये दो देशों माली और निजर से बिल्कुल सटा हुआ है, और वहाँ पर उस इलाके में जो है काफ़ी चरमपंथी हथियारबंद जो हैं गुट मौजूद हैं। आगे BBC रेडियो से जुड़े रहे हैं और BBC हिंदी वेबसाइट से भी हम इस बारे में आपको आगे भी खबरें बताते रहेंगे और जानकारियां जैसे हमारे पास आती रहेगी। और अब चलते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस में ड्रग ट्रायल यानी एक दवा की टेस्टिंग में शामिल 90 लोगों में से कई की हालत ख़राब हो गई है। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनमें से एक व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है, यानी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जबकि कई दूसरों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये दवा दर्द से संबंधित है। कंपनी ने हालांकि कहा है कि उसने सभी मानकों का पालन किया था। दोबारा सुने अमल चौधरी से ये रिपोर्ट।
फ्रांस में एक दवा के परीक्षण के दौरान 90 लोगों को प्रयोगात्मक दवाई दी गई, जिसके बाद एक व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है और 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक इस दवाई का कोई एंटीडोट भी नहीं बनाया जा सका है, जिसकी वजह से लोगों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद कम दिख रही है। रेन शहर में मौजूद इस अस्पताल के प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट जाइल्स एडन का कहना है कि अस्पताल में मौजूद 5 में से 3 की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और अब शायद ही तीनों ठीक हो पाएं। खबरों के अनुसार ये एक भांग आधारित दर्द निवारक दवा थी। इस दुर्घटना के बाद परीक्षण को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस दवा को एक पुर्तगाली कंपनी बियाल ने बनाया था। जिन लोगों ने भी अपने ऊपर इस दवा के परीक्षण के लिए स्वेच्छा से अपना नाम दिया था उन्हें वापस बुला लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मारिसोल टूरिन ने मरीजों से मिलने के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि वो इस दुखद घटना की जड़ तक जाएंगी। उन्होंने कहा,
Les familles sont effondrées, nous ferons en sorte que toutes les réponses leur soient apportées.
इन सभी का परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी को उनके जवाब मिले। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तो मुझे इस तरह का पहले कोई हादसा याद नहीं आ रहा है। जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और इससे जुड़ी जांच में पूरी सतर्कता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री मारिसोल टूरिन के शब्द। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जाइल्स एडन का कहना है कि अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन अब वो लोग शायद कभी सही नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा,
4 des 5 autres patients ont des troubles neurologiques de gravité différente et un patient.
अस्पताल में जो 5 मरीज हैं, उनमें से 4 को मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं। जो बाकी का बचा एक मरीज है, उसमें इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी हमने उसे अभी निगरानी में रखा है। उन 4 में से 3 की हालत बहुत ही गंभीर है और मुझे डर है कि वो तीनों अपाहिज भी हो सकते हैं और शायद ही वो दोबारा ठीक हो सकें। प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट चाइल्ड्स एडन। ये परीक्षण फ्रांस आधारित एक कंपनी बायो ट्रायल करा रही थी। इस कंपनी को 1989 में इसी काम के लिए स्थापित किया गया था और ये अब तक हजारों ऐसे परीक्षण करा भी चुकी है। اپنی ویب سائٹ پر کمپنی نے مریضوں پر دوائی کے ہوئے دشپربھاووں کی بات سویکار کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریکشن کے دوران انتراشٹریہ نیموں اور بائیو ٹرائل کی سبھی پرکریاؤں کا پالن کیا گیا تھا۔
فرانس میں ڈرگ ٹرائل جس میں کافی لوگ پربھاوت ہوئے ہیں جس سے، اور ایک ویکتی برینڈیڈ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ سنا رہے تھے امل چودھری۔
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کی طرف۔ بہوجن سماجوادی پارٹی کی نیتا مایاوتی نے اپنے جن دن کے موقع پر کیندر کی مودی سرکار اور اتر پردیش میں موجود سطح میں موجود سماجوادی پارٹی کی سرکار پر جم کر حملہ بولا۔ حالانکہ لکھنؤ میں آیوجت اس کارکرم میں انہوں نے کانگریس کے پرتی کافی نرمی دکھائی۔ ویسے کانگریس نہ تو کیندر میں بھارت میں موجود ہے ستا میں اور نہ تو اتر پردیش میں ہے، پھر بھی اس نرمی کے راجنیتک معنی نکالے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر کی رپورٹ۔
یوں تو مایاوتی اپنا جنم دن اکثر دلی میں مناتی ہیں، لیکن اگلے سال ہونے والے ودھان سبھا چناؤ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بار لکھنؤ میں ہی جنم دن منایا۔ اس موقع پر مایاوتی کے بھاشن میں چناوی آغاز کی آہٹ بھی سنائی دی اور راجنیتک گٹھ جوڑ کے سنکیت بھی دکھے۔ مایاوتی نے راجیہ کی سماجوادی سرکار پر جم کر آروپ لگائے۔ قانون ویوستھا سے لے کر سرکاری پیسے کے دروپیوگ اور فضول خرچی کی بات تو انہوں نے کی ہی، سماجواد کے نام پر بھی خوب طنز کسا۔ مایاوتی نے کیندر سرکار کو بھی نہیں بخشا، بھارتی جنتا پارٹی پر ووٹ کے لیے سامپردائک بھاونائیں بھڑکانے کا آروپ لگایا۔ پردھان منتری نریندر مودی خاص طور پر ان کے نشانے پر تھے۔ دیکھا جائے تو کیندر میں بھاجپا کے نیترتو میں این ڈی اے کی سرکار ہے اور راجیہ میں سماجوادی پارٹی کی۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہی ان کی مکھیہ پرتیدوندی بتائی جاتی ہے، لیکن چناوی میدان میں کانگریس پارٹی کا بھی ایک اہم کردار رہے گا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں کانگریس کے پرتی ان کی نرمی نے راجنیتک سمبھاوناؤں کے کچھ سوال کھڑے کر دیے، وہ بھی تب جبکہ یہ قیاس پچھلے کچھ سمے سے لگ رہے ہیں کہ راجیہ میں آگامی ودھان سبھا چناؤ بسپا اور کانگریس مل کر لڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ کانگریس پارٹی اس سمبھاونا کو سرے سے خارج کرتی ہے۔ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह का कहना था,
इसका निर्णय वर्किंग कमेटी करता है, ऐसा नहीं है कांग्रेस अकेले लड़ेगी, चूंकि वो हो सकता है इसलिए बोले हो कि दिल्ली में एक लखनऊ में सत्ता में हो सकता है बोला हो लड़ेंगे।
जहां तक केंद्र सरकार और भाजपा की बात है तो मायावती ने उसे घरेलू मसलों पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी घेरा और उसमें नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रेक्षकों की नजर में भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की संभावना को मायावती के इन तेवरों ने लगभग खारिज कर दिया है। इसीलिए अखिलेश सिंह कांग्रेस के साथ बसपा के जाने की संभावना को भले ही खारिज कर रहे हों, लेकिन जानकारों की नजर में यह संभावना उतनी खोखली भी नहीं है जितनी कि अखिलेश सिंह बता रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की के संकेत मिल रहे हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और इसी तरह के राजनीतिक संकेत और समीकरण तैयार हो रहे हैं पंजाब में भी, जहां अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को अपनी पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, यानी कि वो एक हो गए। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तल्ख टिप्पणियां की हैं और इसे मामूली घटना करार दिया है। एक रिपोर्ट के साथ रविंदर सिंह रॉबिन।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने अपनी पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया है। पंजाब की सत्ता से 10 वर्षों से दूर रही कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। मनप्रीत ने अपनी पार्टी का विलय दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में किया।
इन्होंने हमारे दिल जीत लिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने बात करी हमसे, मुझे लगता है पंजाब के एक तहसीलदार में इनसे ज्यादा अकड़ है। एंड ही वाज सो वेल मीनिंग और उनकी जो मैंने बातें सुनी उन बातों में एक ताजगी है और जो नौजवान पीढ़ी है उस पीढ़ी से वो हम आहंग है। ये वजूहत थी कि आज पीपल्स पार्टी और की शमूलियत जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो रही है और मैं समझता हूँ इसके जो नतीजे निकलेंगे वो पंजाब की आवाम के लिए वो बहुत खुशाइन होंगे।
मनप्रीत बादल अपने चाचा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल बादल के नेतृत्व में चार बार एमएलए रह चुके हैं और 2007 से 2010 तक तो वित्त मंत्री का पद भी उनके पास था। 2010 में अकाली दल ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम पंजाब पीपल्स पार्टी रखा और 2012 के ही विधानसभा चुनाव में उतर गए, पर वो चुनाव में बुरी तरह से हार गए और दो जगह पे जहाँ पे वो खुद खड़े थे वो सीटें भी वो हार चुके थे। मनप्रीत बादल के कांग्रेस में शामिल होने पर पंजाब के दूसरे राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग ने तो उन्हें एक एक्सपायर इंजेक्शन तक कह डाला।
ऐसा कि मनप्रीत बादल पंजाब की राजनीति का एक्सपायर इंजेक्शन है, इसके कांग्रेस में जाने से ना तो उनका भला होने वाला है ना कांग्रेस का भला होने वाला है। आधारहीन मौका प्रस्त कुंठित हताश नेताओं के जमावड़े बन गए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस।
इसी तरह आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के सीनियर नेता सुमेल सिंह सिद्धू ने मनप्रीत बादल को एक नाकाम नेता कहा।
सन 2014 में आप देखिए कि पहले यही मनप्रीत बादल आम आदमी पार्टी में आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, नहीं हो पाया। तब फिर इन्होंने बठिंडा का जो चुनाव लड़ा वो भी इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पतंग पे ना लड़के कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ा और अब उनका जो विलय हुआ है कांग्रेस में तो वो इस एक प्रक्रिया का लॉजिकल कंक्लूजन।
पंजाब की राजनीति में आज का दिन कहें तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस का दिन रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने प्रधान बनने के बाद आज अपने खेमे को बड़ा तो जरूर किया। बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
अतिवादी संगठनों के चंगुल में भारत पाक संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा के बाद बंधी उम्मीदों पर पठानकोट हमले से पानी फिरा। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिशों पर पलीता क्यों लगाया जाता है? क्या दोनों देश अपने अपने अतिवादियों के चंगुल में हैं? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब देखते हैं किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया अभियान की आज शुरुआत करेंगे। इस दौरान कई उभरती कंपनियों के संस्थापक इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसमें ऊबर टेक्नोलॉजी के संस्थापक ट्रेविस कालानिक, सॉफ्टबैंक के अध्यक्ष निकेश अरोड़ा और वीवर्क के संस्थापक एडम न्यूमैन शामिल रहेंगे। इसके साथ ही विश्व भर से करीब 2000 नई कंपनियों के मालिक इसमें शिरकत करेंगे। कर्नाटक के बेलगावी शहर में छठा बेलगाम अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू होगा। 4 दिन चलने वाला यह महोत्सव अंगदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। युवा महोत्सव उमंग और महिला महोत्सव प्रेरणा इसी का हिस्सा होंगे। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड और फ्रांस समेत 25 देशों के पतंगबाज हिस्सा लेंगे। चीन द्वारा प्रायोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB आज से बीजिंग में काम शुरू कर देगा। बैंक में भारत समेत 56 अन्य देश संस्थापक हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनचिंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केचियांग इसके उद्घाटन समारोह में शामिल रहेंगे। 100 अरब डॉलर की पूंजी से शुरुआत करने वाले इस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता बिग बैश लीग का 30वां मैच सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच होगा। सिडनी में खेले जाने वाला यह मैच स्थानीय समय अनुसार शाम 6:10 पर शुरू होगा।
और अब एक अता मोहम्मद के बारे में हमने बताया था कि अता मोहम्मद की कहानी सुनवाएंगे। अता मोहम्मद उन सैकड़ों या शायद हजारों लोगों में से एक हैं जिनका काम है कब्रें खोदना। कब्र खोदना दूसरों के लिए, दफनाए जाने को, लोगों को दफनाने के लिए। लेकिन अता मोहम्मद का ताल्लुक भारत प्रशासित कश्मीर से था, उस स्थान से, उस इलाके से जहाँ बिना निशानदेही वाले कब्र बड़ी तादाद में पाए गए हैं। माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
अरे आओ ना कि जहां गई जहां गया सो जाओ अरे आओ ना कि थक गई।
कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी बॉलीवुड फिल्म हैदर का ये गाना जरूर आपके जहन में होगा। फावड़े और बिलचे से बर्फ में कब्र खोद रहे इन कश्मीरियों के जरिए फिल्म में कश्मीर की राजनीति के एक अहम सवाल को उठाया गया है और ये सवाल है गुमशुदा कश्मीरियों की अनजान लाशों का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में अगर आप इस सवाल को लोगों से पूछें तो वो आपको तुरंत अता मोहम्मद खान का नाम बताएंगे जिन्होंने इन नामालूम लोगों के लिए सैकड़ों कब्रें खोदी हैं और साथ ही इन दफन हो जाने वाली लाशों से जुड़े कई सवालों को बाहर निकाला है। यही वजह है कि 75 साल की उम्र में अता मोहम्मद खान का जब निधन हुआ तो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर चहाल बनियार उरी गांव में उनके घर लोगों का तांता लग गया। अता मोहम्मद के बड़े बेटे मंजूर अहमद खान बताते हैं कि कश्मीर के तनावपूर्ण हालात में यहाँ कहीं एनकाउंटर होते थे।
जी वो लोगों को सीआरपी आर्मी वगैरह इनकाउंटर करते थे जो उनको फिर ले आती थी तो नियर पुलिस स्टेशन पे उनको इन्फॉर्म करते थे तो फिर हमारे हल्का भिंडार में मोहल्ला बादशाहबाड़ी में वो लाते थे लाकर वो उनको दफन करवाते थे। फिर
8वीं तक पढ़े अता मोहम्मद ने 11 साल तक सूबे के बिजली विभाग में काम किया था। बाद में उनको नौकरी से हटाया गया लेकिन कब्रें खोदने का सिलसिला थमा नहीं। घर के करीब ही कब्रिस्तान था जहां वो काम करने लगे, साथ ही खेती बाड़ी भी करते थे। उन्होंने 2002 से 2007 के बीच चहल बोनियार उरी गांव में 235 ऐसी कब्रें उन लोगों के लिए खोदी जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। अता मोहम्मद के रिश्तेदार और गांव के नंबरदार मुफ्ती कयूम खां कई बार अता मोहम्मद के साथ कब्रिस्तान जाते और लाशें दफनाए जाने तक उनके साथ रहते थे। कयूम खां एक वाकया बताते हैं जब अता मोहम्मद को एक दिन में 9 शव दफनाने पड़े थे।
रात को कुछ उनको हो गया, ज्यादा लाशों को देखा था ना सर, इसीलिए उनके ख्याल आ जाता था। मुझे बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ, तो मैं गया, मैंने बोला क्या बात है, तो बोला उन्होंने कि मुझे कुछ सांस जैसी बंद हो जाती है तो मैं डरता हूँ, रात को ख्वाब में ख्याल देखता हूँ बड़ी कुछ है बड़ी कुछ है बड़ी कुछ है।
अदा मोहम्मद बीते 3 साल से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। मंजूर बताते हैं कि सेना और पुलिस ने कभी कब्रें खोदने का मुआवजा नहीं दिया बल्कि उल्टे वो उनको धमकाते थे। कश्मीर में जब भी कोई बेनाम लाश को दफनाने की बात होगी तो अता मोहम्मद भी याद आते रहेंगे। माधव जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने कल सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में इस जोड़ी ने फ्रांस की तीसरी वरीयता हासिल जोड़ी कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविच को 1-6, 7-5, 10-5 से मात दी। ये सानिया हिंगिस का 11वां खिताब है। इतना ही नहीं, इस जोड़ी की ये लगातार 30वीं जीत है। उधर पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया भी सिडनी टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं जहां उनका सामना अमेरिका के जेमी मर्रे और ब्राजील के ब्रूनो सुआरेस की जोड़ी से होगा। लेकिन क्रिकेट में भारत के हाथ कल लगातार दूसरी हार लगी।
16 मैच अब तक अजेय रहे ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर 2014 से लेकर और ये 17वां मैच है।
और अपनी जमीन पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल 7 विकेट से मात दी और लगातार 17वीं जीत भी हासिल की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 309 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उसने जॉर्ज बेली के नाबाद 76 और ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद 26 रन की मदद से एक ओवर पहले ही केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
पॉइंट की दिशा में खेला है और रन पूरा किया और इसी सिंगल के साथ इस मैच को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से।
वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच ने 81 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 और उनके जोड़ीदार शॉन मार्श ने भी 84 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 71 रनों की पारी खेलकर पहले ही भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग आधे ओवर खेलकर यानी 24.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी कर जीत की मजबूत बुनियाद रखी। उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी 47 गेंदों पर 46 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर भारत पर दबाव बनाए रखा। इससे पहले भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार दूसरी बार टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारत ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 308 रन भी बनाए। विराट कोहली ने भी लगातार दूसरा अर्धशतक बनाते हुए 59 रन बनाए। हालांकि शिखर धवन सस्ते में आउट हुए, उन्होंने केवल 6 रन बनाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने 80 गेंदों पर 89 रन ठोककर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। तो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 10वां और मौजूदा सीरीज का लगातार दूसरा शतक बनाते हुए 127 गेंदों पर 124 रन बनाए, वो रन आउट हुए। भारतीय टीम की हार के बावजूद रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन वो निराश थे कि शतक बनाने के बावजूद वो हारने वाली टीम के खिलाड़ी थे।
Man of the match for another brilliant 100. George Bailey almost pipped him, but in the end, the vote went to Rohit Sharma. There you go.
You score individually, but at the end of the day, if you're on a losing side, that is pretty disappointing.
ऑस्ट्रेलिया के जेम्स वॉकनर ने 64 रन देकर 2, स्कॉट बोलैंड ने 64 रन देकर 1 और जॉन हेस्टिंग्स ने 46 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मैच समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान धोनी टीम के गेंदबाजों से बेहद निराश नजर आए।
थोड़ा एरर हो रहा है हमारे लाइन में, जिसके कारण हम काफी वाइड्स भी दे रहे हैं। अगर आप गेम देखे तो काफी ऐसे डिलीवरीज थे जो लेग साइड में काफी बाउंड्रीज गई है कीपर और फाइन लेग के बीच में, उससे काफी प्रेशर बैट्समैन के ऊपर से निकल जाता है।
दरअसल ईशांत शर्मा ने 8, उमेश यादव ने 2 और बरिंदर सरन ने 1 वाइड गेंद की। 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में अब भारत 2-0 से पिछड़ चुका है, जबकि तीसरा मैच कल मेलबोर्न में खेला जाएगा। उधर ऑकलैंड में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल पाकिस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को 16 रन से मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो पूरे 20 ओवर खेलकर 155 रनों पर सिमट गई। हालांकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन ने 70 और कोलिन मुनरो ने तो केवल 27 गेंदों पर 6 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 56 रनों की धुआंधार पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के 61 और उमर अकबल के 24 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन बनाए। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
नमस्कार, भारत का आज का कार्यक्रम खात्मे पर है। एक बार फिर से सुनते हैं उसके पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। फ्रांस में एक प्रयोगात्मक दवा के परीक्षण के चलते एक व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है, जबकि 3 की हालत बहुत ही गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री मारिसोल टूरिन ने इसे एक दुखद घटना बताया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू में एक होटल पर हुए चरमपंथी हमले में 20 लोग मारे गए हैं और 15 घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों को बंधक बनाए जाने की खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्होंने सीरिया के शहर मदाया में एक मेडिकल टीम और मोबाइल क्लिनिक भेज दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अधिकारी टेरेस चासरेविक ने कहा है कि सीरियाई सरकार ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सानाउल्ला ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। भारत की सानिया मिर्जा स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने WTA सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब जीत लिया है। संघर्षपूर्ण फाइनल में सानिया हिंगिस ने कैरोलाइन गार्सिया और क्रिस्टीना माल्देनोविच की जोड़ी को 1-6, 6-5, 10-5 से हरा दिया। क्यूबा से चले 8,000 में से 180 शरणार्थियों का पहला जत्था अमरीका पहुंच चुका है। बीबीसी समाचार।
इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था शाकिर आलम ने। अगली मुलाकात विश्व भारती में ठीक एक घंटे बाद। फैसल महमूद अली और पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।